नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك واصحابك يا نور الله
وعلى آلك واصحابك يا نور الله।
किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है और उसका नाम है नूर वाली किताब। और नूर वाली किताब से मुराद अल्लाह पाक की आखिरी किताब है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी उम्मत की हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने अकदस पर नाजिल फरमाई, जिसे हम क्या कहते हैं, कुरान पाक, कुरान शरीफ, कुरान मजीद। बहुत सारे इसके मुबारक नाम हैं। तो कुरान मजीद जो कि नूर वाली किताब है, जिसमें हिदायत का सामान है, बड़ी बरकत वाली किताब है, इसमें अल्लाह पाक ने हर शय का बयान फरमाया है। हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स रखते हैं, हर सेगमेंट ही में कोशिश होती है कि कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें हम सीखें, बयान करें। और किड्स मदीचल के नाज़रीन के लिए बिलखसूस बहुत सारी मालूमात भी होती है, सवालात जवाबात की सूरत में भी, कुछ रिवायात अहादीस की सूरत में भी। पहला सेगमेंट हमारा होगा जिसमें हम कुरान मजीद की किसी मुबारक सूरत की चंद आयात सुनेंगे। हमारे साथ किड्स मदीचल के कारी साहब होंगे जो हमें तिलावत सुनाएंगे, हम तिलावत सुनेंगे। बच्चों, तिलावत जिस तरह करना सवाब का काम है, इसी तरह कुरान पाक जब पढ़ा जाए तो उसकी तिलावत सुनना भी क्या है, सवाब का काम है। अल्लाह पाक इस पर नेकियाँ अता फरमाता है। तिलावत मुकम्मल होने के बाद हम पहले सेगमेंट में क्या करेंगे, हम इल्म तजवीज़ से मुतालिक कुछ गुफ्तगु करेंगे, यानी वो कायदे, वो उसूल, वो बातें जिनका लिहाज रख कर, जिनका ख्याल रख कर, जिनका इम्प्लीमेंट करके हम कुरान मजीद को दुरुस्त अंदाज में पढ़ने में कामयाब होते हैं, कोशिश करते हैं, उन बातों को शामिल करते हैं। तो कुछ लर्निंग होगी। और पहले सेगमेंट का नाम हमने रखा है तजवीद क्लास। तजवीद से मुराद वो इल्म जिसमें हम कुरान मजीद को दुरुस्त अंदाज में पढ़ने के उसूल जानते हैं, और क्लास का मतलब आप समझते हैं कि जहाँ लर्निंग होती है, कुछ सीखने सिखाने का मरहला होता है। तो बच्चों, पहले सेगमेंट का नाम क्या है, तजवीद
क्लास।
कुरान मेरा नूर वाली किताब।
जी, तजवीद क्लास। हमारे साथ किड्स मदजिल के एक कारी साहब मौजूद हैं, अब्दुल्ला अतारी। कैसे अब्दुल्ला भाई, ठीक है आप?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल।
माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई, आज के एपिसोड में कुरान मजीद की किस सूरत का आपने इंतखाब किया तिलावत के लिए?
मैंने सूरह यासीन की चंद आयत की तिलावत की।
जी, सूरह यासीन की चंद आयत की तिलावत ये फरमाएंगे। ये मुझे बता दीजिए कि सूरह यासीन कुरान मजीद के कौन से पारे में है?
22वें और 23वें पारे में,
दो पारों में, यानी कि 22वें से शुरू होकर 23 पर आकर मुकम्मल होती है। ये मक्की सूरत है, मदनी सूरत है?
मक्की है।
माशाल्लाह। जो सूरह यासीन, जिसको कुरान मजीद का दिल भी कहा जाता है, बड़ी मुबारक बरकत वाली सूरत है। आइए सूरह यासीन की चंद आयात की तिलावत सुनते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم
سبحان الله
ماشاء اللہ سورہ یاسین کی چند آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں کیا ہو چکا ہے آغاز سورہ یاسین کی ہم نے تلاوت سنی اور سورہ یاسین کی ان آیات کو ہم اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جن کو ابھی پڑھا گیا بچوں بہت سارے کلمات بہت سارے حروف اور بہت سارے اعراب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور علم تجوید کے بہت سارے ایسے قاعدے ہیں جن کا استعمال کر کے ہمارے عبداللہ بھائی نے ان آیات کو پڑھنے کی کوشش کی ہے اللہ پاک ان کی کوشش کو قبول فرمائے بچوں آج میں آپ کے سامنے ایک اصول بیان کروں گا ایک قاعدہ بیان کروں گا جو بہت آسان ہوگا سمجھنا بھی انشاءاللہ آسان ہوگا ایک مرتبہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا لیکن یہ ہے کہ جو بات ہم سمجھتے ہیں اس کو بار بار دہراتے رہیں اس کی پریکٹس کرتے رہیں تو وہ پھر پکی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو علم کو سیکھنے کا انداز اور اس کے آداب بھی یہی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک علم کی بات اگر سیکھی ہے تو اس کو بار بار پڑھتے رہیں ریپیٹ کرتے رہیں اس پر عمل کریں دوسروں تک پہنچاتے رہیں تو ایک چیز کی تکرار ہوتی ہے تو وہ دل میں قرار پکڑ جاتی ہے بعض بچے کیا کرتے ہیں بس ایک دفعہ پڑھ لیا وہ سمجھتے ہیں ہم نے سیکھ لیا اب ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ٹائم گزرنے کے بعد وہ چیز ذہن سے محو ہو جاتی ہے یعنی بندہ بھول جاتا ہے ٹھیک ہے تو علم کا طریقہ کیا ہوتا ہے سیکھنے کا بچوں کہ اس کو کیا کیا جائے بار بار پڑھا جائے ریپیٹ کیا جائے اس کو دہرایا جائے تو وہ پھر چیز پکی ہو جاتی ہے تو آج ہم بات کریں گے مد منفصل پر کس پر مد جی مد کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مد متصل ایک ہوتا ہے مد منفصل ایک مد لازم ایک مد عارض ایک مد لین لازم ایک مد لین عارض تو یہ بہت ساری اقسام ہوتی ہیں اور مدنی قاعدے میں تجوید کی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اصول بیان کیے جاتے ہیں تو ان بہت ساری مدات میں سے ایک مد کو آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور وہ ہے مد منفصل یہ کب ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا انداز ہے اس کو کتنا کھینچنا چاہیے تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین مد منفصل کی تعریف اس کا اصول اور اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد کس کے بعد حروف اور حروف مدہ کتنے ہیں تین الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو
واؤ مدہ
اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ جی تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ حرف حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں ہوتا ہے مد منفصل ایک کلمہ ہے جس کے آخر میں ہمیں حرف مدہ نظر آ رہا تھا الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ اب وہ کلمہ ختم ہوا اس کے بعد دوسرا کلمہ عربی کا آ رہا ہے اور اس دوسرے کلمے کی ابتدا میں ہم کو حمزہ نظر آ گیا حرف حمزہ نظر آ گیا تو ہم کیا کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے مد منفصل اور اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں فوراً بعد حمزہ آ جائے تو وہ ہوتا ہے مد متصل اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہم صرف پڑھ رہے ہیں مد منفصل کو ٹھیک ہے تو مد منفصل کو دوبارہ سنیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو اگلے والے کلمے میں ہو تو وہاں ہوتا ہے مد منفصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے کیونکہ مد کا مطلب ہی کھینچنا ہے تو مد متصل ہو منفصل ہو مد لازم ہو عارض ہو لفظ مد آ گیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہاں ہم نے کچھ کیا کرنا ہے کھینچنا ہے آواز کو دراز کرنا ہے تو مد منفصل کو کھینچنے کی مقدار کیا ہے تو قاری صاحبان نے علماء نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ مد منفصل کو دو ڈھائی الف کی مقدار کھینچیں گے دو ڈھائی الف کا اندازہ کیسے ہے چار یا پانچ حرکات کی مقدار مد منفصل کو کھینچ کے پڑھتے ہیں یعنی کہ متحرک حرف زیر زبر پیش والے حرف اگر چار ہوں یا زیر زبر پیش والے حروف پانچ ہوں چار یا پانچ ہوں تو چار متحرک حروف یا پانچ متحرک حروف کو پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم ہم نے کیا کرنا ہے مد منفصل کو کھینچ کے پڑھنا ہے اور بچوں یہی کھینچنے کی مقدار مد منفصل میں بھی ہے یعنی مد منفصل ہو یا مد متصل ہو دونوں کو کتنا کھینچیں گے دو ڈھائی الف یعنی چار یا پانچ حرکات کی مقدار مد متصل اور مد منفصل کو دو ڈھائی الف یعنی چار یا پانچ حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر مد منفصل کہاں نظر آ رہا ہے تو یہاں دیکھیں گے سورہ یاسین میں آیت نمبر 22 کی ابتدا میں آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایک کلمہ نظر آ رہا ہے لام الف زبر لا تو دیکھیں الف سے پہلے زبر آئے تو کیا ہوا الف مدہ حرف مدہ آ گیا اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آ رہا ہے حمزہ نظر آ رہا ہے آپ کو آپ کہیں گے یہ تو الف ہے تو میں کہوں گا یہ الف اب نہیں ہے क्योंकि अलिफ वो होता है जिस पर कोई हरकत जेर ज़बर पेश ना हो। जब अलिफ पर जेर ज़बर पेश आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं रहता, क्या बन जाता है? हमज़ा। तो अब देखिए इस अलिफ पर क्या आ गया? हमज़ा। तो अब ये अलिफ ना रहा, क्या बन गया?
हमज़ा।
क्या बन गया?
हमज़ा।
तो अब देखें अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है, लेकिन हमज़ा दूसरे कलमे में। देखें ला एक कलमा है, ला, और आबुदू ये क्या है? दूसरा कलमा है, ठीक है? ये अलग अलग वर्ड है, ठीक है? तो ला एक हर्फ, आबुदू दूसरा कलमा, अलग अलग सेपरेट हैं, ठीक है? तो अब देखिए अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आया तो क्या होगा? मद्दे मुनफसिल। क्या होगा? मद्दे
मुनफसिल।
कितना खींचेंगे? दो ढाई यानी चार या पांच हरकत के बराबर। इसी तरह दूसरे मकाम पर हम देखते हैं मद्दे मुनफसिल कहां आ रहा है। यहां देखेंगे नून या जेर
नी,
या मद्दा आया, इसके बाद देखें क्या आ रहा है? हमजा। और वही सूरत है कि हमजा दूसरे कलमे में है, क्योंकि इन नी एक हर्फ है और इधन दूसरा कलिमा है, ठीक है? तो या मद्दा हर्फे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ रहा है तो क्या होगा? मद्दे मुनफसिल, जिसको दो ढाई यानी चार या पांच हरकात के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हमें तजवीद के इन कवायद को समझने और इनके मुताबिक दुरुस्त अंदाज और लहजे में कुरान मजीद की तिलावत करने की सआदत अता फरमाए, उसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ, बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बच्चों क्या करते हैं, कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों और आयतों के फ़ज़ाइल जानते हैं जो प्यारे अकलम ने आपके सहाबा ने बयान फरमाए हम तक पहुँचाए। तो सेगमेंट का नाम है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। क्या नाम है? सूरत और आयात के
फ़ज़ाइल।
नूर वाली
जी, सूरत और आयात के फजाइल। तो आज के सेगमेंट में हम जिस सूरत की फजीलत जानेंगे वो कुरान मजीद की सूरतों की तरतीब सीक्वेंस के एतबार से दूसरी सूरत है, और उसका नाम है सूरह बकरा। सूरह
बकरा
जी, सूरह बकरा। इसका कुछ इंट्रोडक्शन सुनते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, अरबी जबान में बकरा काऊ को कहते हैं। काऊ क्या होती है? गाय। गाय देखी आप लोगों ने, ठीक है? तो अरबी जबान में बकरा किसको कहते हैं? गाय को। यानी गाय को अरबी फॉर्म में देखेंगे तो वो जो अहले अरब होते हैं वो गाय को अरबी में क्या कहते हैं? बकरा। और इस सूरत में यानी सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने एक गाय का वाकया बयान फरमाया है, इस वजह से इस सूरत को सूरह बकरा कहते हैं। बच्चों जो सूरतों के नाम होते हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह होती है, लॉजिक होती है कि इस सूरत का ये नाम है तो क्यों है, ठीक है? तो सूरह बकरा को सूरह बकरा क्यों कहते हैं, इसकी वजह आज हमने जानी कि बकरा अरबी जबान में गाय को कहते हैं। चूंकि सूरह बकरा में एक गाय का वाकया बयान किया गया है जिसमें बहुत सारी नसीहत है, दर्स के पहलू मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त लेसन मौजूद है उसमें, तो चूंकि गाय के वाक्य को बयान किया गया लिहाजा इस सूरत का नाम ही क्या हो गया? सूरह बकरा। अब इसकी फजीलत क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुनते हैं, चुनाचे सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की एक बुलंदी है, हर चीज की एक बुलंदी है, और कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा है। मजीद सुनिए, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और इस सूरत में यानी सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार है, और वो आयत आयतुल कुर्सी है।
सुभानअल्लाह।
एक और फजीलत सुनते हैं, चुनाचे हदीसे पाक में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। इसका मतलब क्या है? यानी अपने घरों में इबादत किया करो, ठीक है? तो इबादत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ नवाफिल कुरान मजीद की तिलावत तस्बीहात घर में पढ़नी चाहिए, इसकी बरकत होती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। इसका मतलब है यानी अपने घरों में इबादत किया करो, और शैतान उस घर से भागता है। शैतान उस घर से भागता है, किस घर से? जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। तो शैतान को भगाने के लिए, उसके शर से बचने के लिए एक अंदाज हदीसे पाक में ये बयान किया गया कि हम घर में सूरह बकरा की तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह शैतान भाग जाएगा, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद की तिलावत की बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ जिसमें कुरान मजीद में बयान करदा कुछ मालूमात हम हासिल करेंगे। कुरान मजीद में तो हर शय का बयान है, किसी एक बात को हम टॉपिक बनाकर सेगमेंट करते हैं, और बच्चों सेगमेंट का नाम है हमारा कुरान। क्या नाम है हमारा?
कुरान मेरा नूर वाली।
किताब।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा कुरान। आज हम इस सेगमेंट में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस के बारे में सुनेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी ख़ास चीज़ें अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम जानवरों, परिंदों और जिन्नात की ज़बान भी समझ जाया करते थे। एक दिन इन्हीं परिंदों में से हुदहुद नामी एक परिंदे ने आप अलैहिस्सलाम को एक ख़बर दी कि मुल्क यमन की एक मलिका बिल्किस हैं जो सूरज की पूजा करती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब इनके मुतालिक खबर हुई तो आपने उन्हें एक ख़त लिखा और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। अब मलके बिल्किस इस्लाम कबूल करने की नीयत से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई। मलके बिल्किस का एक तख्त था, उन्होंने वो सात महलात में से सबसे पिछले महल में रखा था। सातों महल के दरवाज़ों पर ताले लगवा दिए थे। मलके बिल्किस का लश्कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से तकरीबन 3 मील के फासले पर था। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया, कौन है जो मलके बिल्किस का तख्त यहाँ ले आएगा? एक जिन ने कहा, मैं दरबार का वक्त ख़त्म होने से पहले हाजिर कर दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इससे भी जल्दी चाहता हूँ। अब हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि अलैह ने अर्ज़ की, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद इलैका तर्फुक, तर्जमा कंज़ुल इरफ़ान, कि मैं इसे आपकी बारगाह में आपके पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। सुबहान अल्लाह। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आँख झपका कर देखा तो तख्त आ चुका था। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, इतना वज़नी तख्त पलक झपकते ही आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया गया। ये है अल्लाह वालों की शान। और हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि अलैह जो पलक झपकते ही तख्त ले आए, ये अल्लाह पाक के वली और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे। उन्होंने अपनी करामत से बस कुछ ही देर में तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
माशाअल्लाह, आज हमने एक वाकया सुना जो कि अल्लाह तबारक व तआला के एक मुबारक नबी से रिलेटेड है और जिनका नाम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप बादशाह थे, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी हुकूमत भी अता फरमाई। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद के वाकयात में गौर व फिक्र करने और उससे दर्स लेने और उससे नसीहत लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज कुछ एक्टिविटी होगी। बच्चों, एक्टिविटी ये होगी कि स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, आ रही है नज़र सबको? इसमें आपको कुरान मजीद के कुछ कलिमात दिखाए जाएंगे, कुछ वर्ड दिखाए जाएंगे, उन पर ज़े ज़बर पेश लगी होगी, लेकिन कोई एक हर्फ ऐसा होगा जहां आपको एराब नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है? उसको हमने कसदन, सही है, इंटेंशनली उस एराब को हमने गायब किया है, ठीक है, हिडन किया है, ताकि आपको हम मौका दें कि आप पहचानने की कोशिश करें। आपने एराब पहचानना है और बताना है कि यहाँ कौन सा एराब आएगा। मिसाल के तौर पर लाम पर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, आपने बताया, आपके लिए आसानी होगी कि उसी वर्ड को, उसी कलमे को जो शो किया जा रहा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मेरी आवाज़ सुनेंगे और उसमें आप पहचान जाएंगे। मैं जब उस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ करूंगा तो सारे एराब मेंशन करूंगा, पढ़ूंगा, ठीक है? मेरी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से हर्फ पर कौन सा एराब था जो नज़र नहीं आ रहा। आपने क्या करना होगा, सामने आपके रेड कलर की बास्केट मौजूद है और उसमें आपके पास बहुत सारे सैंपल्स मौजूद हैं ज़ेर ज़बर पेश के, ठीक है? आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर लाम के ऊपर ज़बर आ रहा है या पेश आ रहा है, तो आप बास्केट में से ज़बर या पेश का सैंपल निकालेंगे और इस तरह एक हाथ में रख के दिखाएंगे हमें कैमरे में और माइक पर बताएंगे कि लाम के ऊपर पेश है, ठीक है? फिर हम स्क्रीन से चेक करेंगे और देखेंगे कि किसका जवाब दुरुस्त है। दो बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा दाएं बाएं जानिब से और देखेंगे कि कौन आगे बढ़ता है और कौन पीछे रह जाता है। तो दाएं जानिब से कौन आएगा और बाएं जानिब से कौन आएगा, इसका फैसला होगा बाद में। पहले हम सेगमेंट का नाम आपको बताएंगे। सेगमेंट का नाम है एराब पहचान कर लगाएं। एराब पहचान कर
कुरान मेरा नूर वाली किताब।
जी, एराब पहचान कर लगाने हैं। दाईं जानिब से कौन आना चाहेगा? चार बच्चे मौजूद हैं हसबे मामूल। दूसरे नंबर पर मौजूद है, अपना नाम बताएंगे।
मोहम्मद खुजैमा।
मोहम्मद खुजैमा भाई, करेंगे मुकाबला आप? पहुंचेंगे फिर रेड कलर की बास्केट के पास। कोशिश करनी है कि आपने जीतना है, ठीक है? कोशिश करनी है, यहाँ से भी जो आएगा वो जीतने की कोशिश ही करेगा। जी, बाईं जानिब से कौन आएगा खुजैमा साहब के मुकाबले में? माशाल्लाह, हाथ खड़े हो चुके हैं 3-4। दूसरे नंबर पर जो मौजूद है, अपना नाम बताएंगे।
मुजम्मिल।
जी मुजम्मिल भाई, आपके सामने खुजैमा साहब मौजूद हैं, शायद उम्र में आपसे छोटे हैं, तो आप क्या इरादा रखते हैं, उनको जितवाएंगे या खुद जीतेंगे?
खुद
जीतेंगे। जो भी आता है जीतने की कोशिश करता है, इशार यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। पहुंचेंगे जनाब अपनी लोकेशन पर। जी, तो वन बाय वन आप दोनों से, ठीक है, میں پوچھوں گا, ایک ایک کلمہ شو کیا جائے گا, آپ نے ون بائی ون بتانا ہوگا کہ اس پر کون سا اعراب ہے. پیٹرن آپ کو میں نے بتا دیا, سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. خزیمہ صاحب پہلا کلمہ ہے قلوبہم. خزیمہ صاحب بتائیں گے کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑا ہے لیکن نظر نہیں آیا؟
با کے نیچے زیر ہے.
با کے نیچے زیر ہونی چاہیے, دکھائیں گے جناب. با کے نیچے زیر, خزیمہ صاحب کا جواب
درست ہے.
جی. مزمل آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے, ربیحت. ربیحت
با کے نیچے زیر ہے.
با کے نیچے, یہاں بھی زیر ہی آئی ہے, دیکھیں گے جناب با کے نیچے زیر ہے یا نہیں ہے. با کے نیچے زیر ہو گئی, مزمل صاحب کا پہلا سوال کا جواب
درست ہے.
پہچان لیا اعراب انہوں نے. جی خزیمہ صاحب دیکھیں گے اگلا کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے, مثلہم. مثلہم جلدی جلدی بتائیں گے.
لام کے اوپر پیش,
لام کے اوپر پیش ہونی چاہیے, پیش اوپر ہی ہوتی ہے حرف کے, دکھائیں گے لام کے اوپر پیش آ گئی ہے, ان کا یہ جواب بھی
درست ہے.
جی مزمل اگلا کلمہ دیکھیں گے آپ, ذہبا. بہت آسان ہے,
با کے اوپر زبر ہے.
با کے اوپر زبر, زبر زبر آ رہا ہے, دیکھیں گے جناب با کے اوپر زبر آ گیا ہے, ان کا بھی جواب
درست ہے.
اس طرح چلتے رہیں گے تو غلطی کسی نے بھی نہیں کرنی. اب لاسٹ آپشن ہوگا آپ دونوں کے لیے, ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, دونوں ہی آگے جا رہے ہیں یا ایک پیچھے رہ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آخری آپ سے سوال ہے یا آخری اعراب آپ سے ہم پوچھیں گے. خزیمہ دیکھیں گے اسکرین پر, ظلماتن. ظلماتن
تا کے نیچے دو زیر,
تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, اور آ گئی ہے تنوین, ان کا جواب
درست ہے.
خزیمہ صاحب تو پار لگ گئے. آخری اعراب ہے اور ہمارے مزمل بھائی ہیں, دیکھیں گے. بکمن,
میم کے اوپر دو پیش,
میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے, یہ کہیں گے بکمن, اور دو پیش کی تنوین آ گئی ہے, ان کا یہ جواب بھی
درست ہے.
تو اس کے ساتھ کیا ہوا, مقابلہ ختم ہوا اور دونوں ہی ونر ہو گئے. یہ عجیب مقابلہ ہے کہ دونوں جیت گئے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق مزید معلومات لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ کچھ سیگمنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل,
نور والی, نور والی, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن.